हमने पिछले लेसन में कुछ चीजें पढ़ी हैं बनी इसराइल के बारे में। हमने देखा कि किस तरह बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब के साथ किया, जो उनके लिए फुरकान बना के भेजी गई थी। हमने ये भी देखा कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको निजात दी फिरौन से, किस तरह उसके जुल्म से, और इनको कितनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। फिर भी जब मूसा अलैहि सलाम इनके लिए तूर से किताब लेकर आए, शरीयत लेकर आए, तो आगे इनका हाल क्या देखा कि बछड़े की पूजा करने में लगे हुए थे। और इसकी जो उनको कफारे के तौर पे इनको कहा गया वो क्या था कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करें। इसके बारे में एक सवाल आया था कि यहाँ पे क्यों कहा गया इन्नकुम जलम तुम अनफुसकुम, और आगे वो तो चलो अपने नफ्सों पर जुल्म किया, फकतुलू अनफुसकुम, इसका सवाल आया था कि बस कत्ल करो अपने नफ्सों को, तो इससे तो मुराद है अपने आप को कत्ल करो, तो फिर आपस में क्यों कत्ल करने को कहा गया। आप ये यहाँ पे ही नहीं है, आप आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस सूरा में बहुत जगह इस तरह आएगा, तुमने निकाला अपने नफ्सों को अपने घरों से, तुमने कत्ल किया अपने नफ्सों को। अपने नफ्सों को जब कत्ल करने का मतलब तो खुदकुशी करना नहीं आया यहाँ पे, बल्कि ये जो इंसान का कुंबा कबीला अपना खानदान है ना, वो भी उसका नफ्स ही है। क्या वो उसकी जान का हिस्सा नहीं है? क्या वो एक खून नहीं है? तो इस लिहाज से आप देखें यहाँ पे कहा गया कि अपने नफ्सों को कत्ल ना करो, यानी आपस में अपने नफ्सों को कत्ल करो, यानी आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी तौबा कबूल हुई और फिर इन्होंने इनके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने किस तरह से जाकर वहां पर अल्लाह ताला को देखने की डिमांड कर दी, जिस पर उनको मौत दे दी गई, और अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहि सलाम की दुआ पर उनको दोबारा जिंदगी अता फरमाई। फिर हमने यह भी देखा कि इनके ऊपर अल्लाह ने नाजिल किया मनोसलवा, और कैसे बादलों का साया इनके ऊपर रहता था। तो अल्लाह ताला ने जो इनको नेमतें अता फरमाई उनका सब जिक्र है, और फिर कैसे 40 साल ये तीह के मैदान के अंदर परेशान रहे, लॉस्ट रहे, और उसके बाद जब इनकी नई नस्ल आई वो परवान चढ़ी तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में। लेकिन उस पे भी उन्होंने क्या नाफरमानी की, किस तरह से हित्तत उनका आता तो कैसे उन्होंने इसका एक मजाक बना लिया और उसको बदल दिया, और उनके ऊपर फिर प्लेग की बीमारी अल्लाह ताला ने भेजी जिससे हजारों मर गए। और आपने उस पिछले सबक में ये भी देखा होगा कि अंधी तकलीद का अंजाम क्या होता है, कैसे वो दीवानों की तरह बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग करते हुए सामरी के कहने पर बछड़े को पूजने लगे, हालांकि पैगंबर उनके अंदर मौजूद थे, उनको सब चीजें बताई हुई थी, पता था उनको ये सही नहीं है बात, अल्लाह को समझते थे जानते थे, फिर भी उन्होंने बछड़े की पूजा की। सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग का अंजाम आप देखते हैं क्या होता है, अंधा बन के किसी के पीछे लग जाना, और उसका नतीजा क्या हुआ। आज भी आगे हम देखेंगे यही बात अभी चल रही है, और इस पारे के एंड तक इनके किस्सा चलता रहेगा, मुख्तलिफ तरह से इनके बारे में बताया गया 2000 ईयर्स तक। आपको पता है ये इमामत के मकाम पर फाइज रहे, यानी पिछली हमसे पिछली उम्मते मुस्लिमा जो थी ना ये बनी इसराइल थे। एक और सवाल आया था कि बनी इसराइल, जो मैंने कहा है कि बनी इसराइल के पास ही किताबें आईं, तो कैसे वो, क्योंकि तौरात जबूर इंजील इन्हीं में आई, मूसा अलैहि सलाम तो आए थे, ईसा अलैहि सलाम भी इन्हीं में आए थे, दाऊद अलैहि सलाम भी इन्हीं में थे, ठीक है। आप आगे जाकर पढ़ेंगे सूरह मायदा में ईसा अलैहि सलाम के बारे में, और तो आपको और भी बातें पता चलेंगी। ये तो अब भी 2000 साल तक ये इमामत के मनसब पर फाइज रहे, और 1400 साल तो इनमें ऐसे गुजरे थे जब कोई वक्त ऐसा नहीं था जब कोई नबी ना हो इनमें, हर वक्त कोई ना कोई नबी होता था, ठीक है। और हम देखेंगे भी कि नबियों के साथ इनके सलूक फिर कैसे थे, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर इनके पास कोई नबी नहीं आया। پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے جو کہ پھر بنی اسرائیل سے نہیں تھے. یہ تو آخری نبی جو ان کے پاس آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اب دیکھیں ہمیں تو 1400 سال ہی ہوئے ہیں اس منصب پر فائز ہوئے ہوئے, ان کو تو 2000 سال ملے. اب اللہ تعالیٰ جو ان کی باتیں یہاں پہ بتا رہا ہے ان کا مقصد ہے. یہ جو سوال اگر میں آپ سے کروں, بہت جگہ پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے آج جو زوال کی جو پستی کی وجوہات ہیں وہ بیان کریں, وہ بتائیں. آپ میں سے شاید کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کہے گا جی ہمارا ایمان نہیں ہے وہ, کوئی کہے گا جی ہم نے تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی, کوئی کہے گا کہ ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. لیکن آپ کو دکھایا گیا ہے پچھلی امت مسلمہ کے کردار اور ان کے جو اعمال تھے اس سے کہ کیا باتیں وجہ بنتی ہیں اللہ کے غضب کی, کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی امت اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت آتی ہے. وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ ہماری بھی وجوہات کیا ہیں, کیونکہ جب تک وجہ نہ پتا ہو اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر آج ہمیں فکر ہے, پتہ نہیں فکر سب لوگوں کو ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, مگر اگر کسی کو فکر ہے نا کہ یہ کیوں زوال ہے, کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کیوں ہم پستی میں جا رہے ہیں اور دن بدن نیچے ہی جا رہے ہیں, کوئی اوپر کی کوئی اچھی کوئی عروج کی خبر نہیں ہمیں ملتی, ہمیں دن بدن یہی پتا چلتا ہے کہ پس رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, بے عزت ہو رہے ہیں, یعنی انتہا ہو گئی ہے, گرنے کی بھی انتہا ہو گئی ہے. پھر دل تو دکھتا ہے مگر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے, کہاں سے کون سی کل پکڑیں, کیسے تصحیح ہو سکتی ہے, کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. یہی تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس ہم کہانی کے طور پہ پڑھ لیں, اچھا 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 وہ اور بنی اسرائیل نے تو یہ کیا یہ کیا, اچھا سبق ختم ہو گیا. جو لوگ واقعی سوچتے ہیں نا امت کے لیے, ان کے لیے ہیں یہ آیات, ان کے لیے نہیں ہے جن کو اپنی بس پڑی ہوئی ہے ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے, باقی جائے جہاں پہ مرضی, امت جو لوٹے یا کٹے ہمیں کیا, وہ تو وہ ہیں اس لیے وہ, ہم فلاں قوم سے ہیں, وہ فلاں قوم سے ہیں, ہمیں ان سے کیا, ہماری نیشنلٹی یہ ہے ہمیں ان سے کیا, ہوتے ہوں گے جو مرضی ان کے ساتھ ہوتا رہے, کیا وجہ بنتی ہے. کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ بچار کرتے ہیں وہ کیا کیسے نکلیں گے, کیا کیا چیز ہے جو نکالے گی, کبھی یہ فکر ہوتی ہے جیسے اپنی فکر ہوتی ہے, اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے, اس طرح امت کی کبھی فکر ہوتی ہے. اگر فکر ہے نا تو یہ آیات آپ کے لیے, اور اگر فکر نہیں ہے پھر ڈونٹ کیئر, جو ہوتا ہے ہوتا رہے, آخر دنیا نے ایک دن ختم تو ہونا ہی ہے نا, ایسے ہی ختم ہوگی. جو اچھا ہے لٹیں پٹیں ان کو, مار پڑے پھر ہی سیدھے ہوں گے. بعض لوگوں کا یہ بھی نقطہ نظر ہوتا ہے. تو یہ وہ امت ہے جس کے لیے ہمارے نبی روئے ہیں راتوں کو, یہ وہ امت ہے, اس کا گرنا ہم سب کا گرنا اور اس کا اٹھنا ہم سب کا اٹھنا, اس کی فکر آپ کے نبی کی فکر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی فالتو نہیں ہے بات, یہ فکر وہ ہے جو آپ کے نبی کو لگی تھی کہ اللہ کو تسلیاں دینی پڑی ہے, نبی آپ نہ اتنی فکر کریں. تو اس لیے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ کوئی کسی قوم کا کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. تو مسئلے سے نکلیں گے کیسے, دیکھیں پھر آیات کو. اور کوئی بھی یہ نہ سوچے ہم تو عورتیں ہیں, تو ہم نے یہ مصیبت پڑی دماغ میں سمجھا لی اپنے آپ کو کہ ہم تو عورتیں ہم کیا کریں گے, لو ہم سے کیا ہوتا ہے, چلو وہیں بیٹھ گئے کہانی ختم, ہم سے کیا ہوگا, ہم سے کیا ہوتا ہے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اب وہ پتہ ہے جو بارش ہوتی ہے نا وہ کس سے بنتی ہے, قطرے قطرے سے. بارش کوئی بہت بڑی بالٹی نہیں آسمان سے پھینکی جاتی, ایک ایک قطرہ ہوتا ہے بارش کا جس سے طوفان آ جاتے ہیں. एक एक कतरा बारिश का होता है जिससे सब्जा उगता है। तो वो हर कतरा अगर ये सोचे मेरे से क्या होगा, मैं तो एक कतरा हूं, मेरे से क्या बनेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही उम्मत उठेगी। इन्हीं इन आयात का और ये सीखने का और ये समझने का मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगियां भी संवारें, अपने घरों को भी संवारें, और हर घर जब संवरेगा तो उम्मत की तकदीर बदल जाएगी। हमें भी अल्लाह दिखाए वो दिन जब ये उम्मत प्राउड होके खड़ी होती है और कहती है हम मुसलमान हैं, देखो दुनिया हम है मुसलमान। मुसलमान ऐसा होता है, ये नहीं कि किधर जिधर जा रहे हैं उधर ही जलील हो रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर ही मार खा रहे हैं। तो देखते हैं आयात आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला तुझसे दुआ है कि इन आयात से हमें सीखने वाला समझने वाला बना दे, हमारी आंखें खोल अल्लाह, हमें राह दिखा अल्लाह, हमें बता, हमारी रहनुमाई फरमा इस कुरान के जरिए, कैसे बदलना है और कैसे तकदीरें बदलेंगी, कैसे इस उम्मत की सुबह होगी। अल्लाह हमें दिखा, हमें जरिया बना। वइज़ इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब बिअस्वाक अल-हजर, जब पानी मांगा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम के लिए। ये कब का वाक्य है जब मूसा अलैहि सलाम ने कौम के लिए पानी मांगा? ये जब कौम गुजर के आई, उस दरिया को पार किया या समुन्द्र को पार किया और आए तो वो एक जगह पर आए। अब आगे ना पानी था, ना पीने को कुछ, ना कुछ। ये अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था कि तारीखी तरतीब के मुताबिक नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि वो तो अभी हमने पढ़ा था कि वो तो शहर में दाखिल हो गए, अब ये कहां से आ गया। नहीं, अब ये शुरू की बात है, इसलिए कि ये कोई स्टोरी की तरह नहीं चल रहा, बल्कि हमें बताने के लिए, समझाने के लिए वाकयात दिए गए। पहला वाकया बाद में हो सकता है, बाद का पहले हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये लोग एक जगह पे, ये भी आता है इनकी किताबों में कि ये लोग इस कदर डेस्परेट हो गए पानी के लिए कि इन्होंने मूसा अलैहि सलाम से कहना शुरू कर दिया, तो इससे पहले ही हम मर जाते और ऐसे हो जाता, हमें यहाँ पे लाके आपने मारना था, हमें किधर ले आए, आपने तो कहा था हमें फलों की जमीन पे लेकर जा रहे हैं, ऐसे लेकर जा रहे हैं, हम यहाँ पे मरने लगे हैं। अब देखिए कितना एक बड़ा मूसा अलैहि सलाम के लिए भी बार बार ये एक चैलेंज खड़ा कर देते थे कि ये आपने क्या कर दिया, कभी समुंदर आ गया तो कह रहे हैं मूसा हमें यहाँ पे ले आए। तो इन्होंने पानी मांगा मूसा अलैहि सलाम से, तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ की, दुआए इस्तस्का ना, सलाते इस्तस्का हमारे यहाँ भी होती है, पानी मांगना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की है, आपके बाद भी ये दुआ की गई। जब भी कोई ऐसी कहत साली की सिचुएशन आई, जब भी पानी की कमी हुई, तो हमें ये सिखाया गया। तो जो बारिश है ना, वो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। बाज दफा हम बारिश 2-3 दिन हो जाए ना, तो हम इतना मुंह बनाते हैं मौसम कितना खराब है, इतना गंदा मौसम है, ऐसे करते हैं, हालांकि हम ये नहीं सोचते कि ये कितनी बड़ी रहमत है। इसके लिए तो पैगंबरों ने दुआ की है, क्योंकि ये बारिश है तो पानी है, तो सब्जा है, तो जिंदगी है। और आप देखें कई खित्ते इस दुनिया में ऐसे हैं, कई मुमालिक ऐसे हैं जहां पे लोग पानी को तरसते हैं, और बारिश अगर किसी दिन हो जाए ना, तो उनके बच्चे बाहर निकल के इतनी खुशियां मनाते हैं कि शुक्र है बारिश हो गई। और हमारे बारिश हो जाए, इंसान ना शुक्र है इतना ज्यादा है, हमें बारिश मिल जाए तो गंदा मौसम, अच्छा ना शुक्री तो इंतहाई है ना, जरा सी गर्मी हो जाए हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय 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 हाय, जरा ठंड हो जाए हाय सर्दी, हाय स्नो हो जाए हाय स्नो। कोई हाल में हम खुश भी हैं, कभी राजी भी होते हो कि अल्लाह तुमने मौसम ये कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसमें भी खैर है, ये बारिश है अल्लाह इसको खैर का हमारे लिए बनाना, अगर सर्दी है अल्लाह इसको खैर की लाना। एक होता है वैसे कहना कि मुझे सर्दी लग रही है, एक है हर वक्त एक शिकायत, एक शिकवा जुबान पे रखना ऐसा क्यों मौसम हो गया, ऐसा क्यों हो गया। यानी जब मैं ही बस इस कायनात का सेट करूं थर्मोस्टेट कि कैसा होना चाहिए, अल्लाह की मर्जी है, उसका मुल्क है, वो जैसा चाहे करे ना। ये कायनात उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, बादशाह जैसे चाहे करे। कभी ये नहीं सोचते वो जैसा चाहे करे। हमें क्या इस चीज को पर ऑब्जेक्ट करने का इख्तियार है, कोई है इख्तियार हमारे पास? लेकिन फिर भी आप देखें रोज हम मौसम के ऊपर इस किस्म के तबसरे कर रहे हैं। तो यहां पे देखें कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए, फकुलना, तो हमने कहा, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। हमने क्या कहा, इद्रिब बि असाकल हजर, मारो अपना आसा इस पत्थर को, मारो अपना आसा पत्थर को। उन्होंने तो बारिश की दुआ की, उन्होंने तो पानी मांगा, उन्होंने तो कहा अल्लाह में पानी दे दे ये, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, पत्थर पे अपना आसा मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं कि अल्लाह पत्थर पे आसा मारने की क्या, मैं तो पानी मांग रहा। नहीं, क्या पैगंबरों का तरीका आप सीखते हैं? ये सीखते हैं हम पैगंबरों से कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आगे से सवाल नहीं है, अल्लाह इसमें क्या हिकमत है अल्लाह पहले बताएं। क्योंकि आज हमारे अंदर ये चीज बहुत कॉमन हो गई, हम अपने आप को अकले कुल समझते हैं कि हमारी बस अकल सबसे कंप्लीट है। हम जो है जिस तरह से हमें समझ आती है, अगर हमें कोई बात नहीं समझ आ रही ना, तो इसका मतलब ये बात ही सही नहीं, जो समझ आती है वो सही है। अब वो कोई डॉक्टर आपको कहता है इतनी सी छोटी सी गोली है, ये खा लेंगे आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं, हम नहीं पूछते उसे लो इतनी छोटी सी गोली कैसे मेरा सर दर्द ठीक करेगी। लेकिन अल्लाह ताला के हर हुक्म के ऊपर हम आगे से सवाल लेके खड़े हो जाते हैं, ये कैसे होगा, ये क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया। पहले तो हमें हिकमतें समझाई जाएं, अब कोई फरिश्ते उतरे हिकमत समझाने के लिए? बास चीजों की समझ आती, बास की नहीं आती, लेकिन आप फिर भी यकीन करते हैं, डॉक्टर की बात पे यकीन करते हैं, वेदर कोई बता रहा उसके ऊपर यकीन करते हैं, कोई और कुछ और चीजें साइंटिफिक फैक्ट्स बताता है हम यकीन करते हैं, उसने कह दिया कि भाई साइंस ने कि भाई जमीन घूमती है, हमने यकीन कर लिया। देखा आपने, जा देखा किसी ने, घूम रही है सूरज के गिर्द घूमती, हमें क्या पता, क्या क्या पता सूरज ही इसके गिर्द घूमता। नहीं, हम मान लेते हैं वो उन्होंने उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहां से बताया, उन्होंने मुझसे देखा, तो हम देख के आए हैं क्या? नहीं, लेकिन मानते हैं ना। फिर अल्लाह की बातों को क्यों नहीं ऐसे मानते कि बस आंखें बंद करके कहें अल्लाह जो तूने बता दिया वही ठीक है। और ये देखें यही पैगंबरों का तरीका। मूसा अलैहि सलाम से क्या कहा गया, अपना आसा अब मारें आप पत्थर को, एक कोई खास पत्थर था कहा जाता है उसके ऊपर कहा गया इसको मारें। फन फजरत, तो फूट पड़े, मिनहू इससे, इतनता आशरता आईना, 12 चश्मे। इब्ने कसीर में है कि ये पत्थर था जिससे चश्मे फूट पड़े, और आदमी अगर खड़ा हो जाता था, यानी उनके 12 कबाइल थे एक्चुअली, उसकी वजह से 12 चश्मे फूटे, एक नहीं फूटा, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि आपस में लड़े। आपको पता ना पानी के पीछे तो बहुत लड़ाइयां हो जाती हैं, खास तौर पे जिस जगह पानी ना मौजूद हो। तो अब इनको अलग अलग चश्मा दिया गया ताकि हर कबीला सेटिस्फाइड रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, और ये हर कबीले को अपना अपने पानी की जगह पता चल गई थी। कद आलिमा कुल्लु उनासे मशरबहुम, हर एक को पता था कि हमारी जगह कौन सी है, क्योंकि वो पानी उसके आगे पत्थर के आगे खड़े हो जाते थे, और जो फिर उसमें से पानी निकलता था उसको उसको पता चल जाता था कि ये हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी जगह जान ली थी कि कौन सी हमारी मेरी जगह है, कौन सी दूसरे कबीले की जगह है, कौन सी तीसरे कबीले की जगह है। और इस पत्थर को ये लेकर रख लिया करते थे अपने साथ सवारी में। ये इब्ने कसीर में आता है कि सवारी पे साथ रख लेते थे पत्थर को, इसमें से नहरें निकल, यानी समझ ले चश्मे निकलते थे ना, तो जिस वक्त उठा लेते थे इसको तो वो बंद हो जाते थे चश्मे, साथ रख लेते थे, तो ये पत्थर इनके साथ साथ ही रहता था। तो कितना अच्छा अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतजाम कर दिया, वरना आपको पता है कि ऐसी जगहों पे पानी का मिलना कितना मुश्किल है, क्योंकि जहां पे कुछ भी नहीं दूर दूर तक। कुलू वशरबू मेरे रिस्किल्ला, और अल्लाह ताला ने इनसे क्या फरमाया, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से। वला तअसौ फिल अर्दी मुफसिदीन, और अल्लाह की जमीन में फसाद फसाती बन के फसाद करते ना फिरो। इन्हें क्या मतलब के खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से। खाओ और पियो यानी कोई पाबंदी नहीं है कि कुछ खाना नहीं खा सकते या इतना खाओ, नहीं, जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया उसमें से खाओ पियो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इससे नहीं मना किया कि आप कभी खाना ही ना खाएं। जैसे बाज दफा लोग इसको भी नेकी परहेजकारी समझते हैं कि हम बहुत ही कम खाते हैं, हम तो कोई खाना खाते ही नहीं है, हम तो इंजॉय ही नहीं करते कभी खाने को या कुछ है नहीं। फरमाया खाओ पियो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि इसराफ ना करो, हद से ना बढ़ो। खाने पीने से नहीं मना कि, ये नहीं कहा गया भूखे रहा करो, ये नहीं कहा गया पानी ना पिया करो, रोज रोजा रखा करो, ऐसे नहीं कहा गया। खाओ पियो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते कि आपको हलवा और शहद पसंद था। हलवा, हलवा से मतलब क्या, अरबिक में हलवा कहते हैं डिजर्ट को, मीठी चीज को, ठीक है। अब हमारे यहाँ बेचारों ने समझ लिया कि हलवा का मतलब हलवा ही है, तो वो हलवे पका पका के रबीउल अव्वल में जो लोगों को देते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बड़ा पसंद था। हलवा नहीं भाई, मीठी चीज, हलवा मीठी चीज के लिए कहा गया। तो खाने पीने को कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, हाँ बस बताया गया कि तय्यबात खाओ, पाकीजा चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ और इसराफ ना करो, बस ये बताया गया। तो इसमें कोई नेकी ना समझे कि हम बहुत नेक हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम खाना पीना पसंद ही नहीं करते। लेकिन क्या कहा गया साथ, लेकिन तुम फसादी ना बनो। फसाद किससे, यानी किसी पे जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो, करप्शन ना करो जमीन में, ना शुक्री ना करो, बेसब्री ना करो, हिर्स ना करो, ये सारी चीजें फसाद में आती हैं। और ये किस लिए होता है, जिस वक्त के इंसान देखें जमीन में ज्यादतियां करने लगता है, हकूक गस्ब करने लगता है ना दूसरों के, दूसरों को तकलीफ देता है, तो फसाद बरपा हो जाता है। और जब फसाद बरपा हो जाता है तो ऐसी जगह पे सुकून नहीं रहता, ऐसी जगह पे अमन नहीं कायम हो सकता। और जब ये भी एक रिपल इफेक्ट होता है, जब एक शुरू करता है तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, हकूक मार रहे हैं, खुद को बड़ा समझ रहे हैं, मुतकब्बिर हो गए हैं, हेयर्स है, तो ऐसी सोसाइटी कि मैं किस कदर बेचैन नहीं होती जहां पे ये चीजें हैं।